नमस्कार भारत, तारीख 11 फरवरी दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बीबीसी हिंदी की पत्रकारिता ने दिखाया असर, 54 साल से भारत में फंसे चीनी सैनिक वांगशी परिवार समेत चीन हुए रवाना।
मिमिशी हमारे स्टोरी सुनी हो वो बहुत दुख पड़ गया। मैं जाना जाओ अपने मुल्क जन्मभूमि थोड़ा लिख कर संतोष आ जाए।
उत्तर प्रदेश के पहले चरण के लिए 15 जिलों के 73 सीटों पर नए विधायकों के लिए पड़ेंगे वोट।
दो मुद्दे सबसे अधिक रिलेवेंट है, एक गन्ना किसानों का मुद्दा है बकाए के भुगतान को लेकर के, और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है।
और विवेचना में सुनिएगा कि कैसे एक फोन कॉल ने इसराइल पर हमले को बचा लिया। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। 54 सालों से भारत में फंसे पूर्व चीनी सैनिक वांगशी अपने भारतीय परिवार के साथ चीन रवाना हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रह रहे वांगशी की कहानी को बीबीसी हिंदी ने प्रकाशित किया था, जिसके बाद भारत और चीन की सरकारों ने उनके चीन जाने का रास्ता साफ किया। रवाना होने से पहले बीबीसी हिंदी से बात करते हुए वांगशी ने खुशी जाहिर की और भारत का शुक्रिया अदा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर आज मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए कुल 840 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच मुकाबला है। पिछले चुनावों में इन 73 सीटों में सपा को 24, बसपा को 23, बीजेपी को 12, आरएलडी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थीं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले इस प्रांत में हो रहे इन चुनावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की परीक्षा भी माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो यात्रा प्रतिबंधों को लेकर लाए गए अपने एग्जीक्यूटिव आदेश को रोकने के अदालती आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो प्रवासियों पर नया एग्जीक्यूटिव आदेश लाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं और वो अगले सप्ताह कदम उठाएंगे। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही एक एग्जीक्यूटिव आदेश जारी कर 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी थी और नए प्रवासियों का आगमन भी रोक दिया था। ट्रंप के इस आदेश पर सिएटल की एक अदालत ने रोक लगा दी है, जिसके खिलाफ दायर की गई व्हाइट हाउस की अपील को भी खारिज कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जापान की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और अमेरिका और जापान का गठबंधन एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की आधारशिला है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ वार्ता के बाद कहा कि दोनों देश उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे को शीर्ष प्राथमिकता देने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और जापान के व्यापारिक रिश्ते निष्पक्ष और पारस्परिक होने चाहिए। उन्होंने कहा, जापान और अमेरिका का गठबंधन प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आधारशिला है। यह महत्वपूर्ण है कि जापान और अमेरिका इस गठबंधन में भारी निवेश करें और हमारी सुरक्षा को और कड़ा करें और रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाएं, जो कि हमारे पारस्परिक नेतृत्व में और मजबूत होंगी और समय के साथ अभेद्य हो जाएंगी। इराक युद्ध के दौरान इराकी नागरिकों पर ब्रितानी सैनिकों के शोषण के आरोपों की ब्रितानी सरकार की जांच अब बंद होने जा रही है। ब्रितानी सांसदों की एक प्रभावशाली समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि सैनिकों पर लगाए गए बहुत से आरोप आधारहीन थे। 7 साल चली इस जांच पर करीब 284 करोड़ रुपए का खर्च आया है, बावजूद इसके एक भी सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। ब्रितानी रक्षा मंत्री माइकल फेलॉन ने कहा, ये सैकड़ों ब्रितानी सैनिकों के लिए बड़ी राहत होगी जिनके ऊपर ये अनुचित आरोप लंबित थे। हम ऐसे कदम उठाएंगे कि फिर कभी ऐसा न हो पाए और हमारे बहादुर सैनिकों पर मनगढ़ंत और निराधार आरोप न लगाए जा सकें। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अभी चंद दिनों पुरानी ही बात है जब बीबीसी हिंदी सेवा ने आपको एक ऐसे चीनी सैनिक की कहानी सुनाई थी जो कि भारत चीन युद्ध के बाद पिछले 54 साल से यहां फंसे हुए थे। इनका नाम है वांगशी। ये अपने वतन चीन जाना चाहते थे। भारत के मंत्रालयों से लेकर हर जगह के सरकारी दरवाजे खटखटाते खटखटाते वांगशी 77 साल की उम्र तक आ पहुंचे। 5.5 दशक के दौरान इनके साथ बहुत कुछ घटा। जेल की सजा काटी, शादी की, बच्चे हुए, लेकिन चीन जाने का सपना सपना ही रहा। पर आखिरकार बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की इस स्टोरी पर भारत व चीन के विदेश मंत्रालय सक्रिय हुए, दस्तावेज बनाए गए और वांगशी आज तड़के 3 बजे की फ्लाइट से चीन रवाना हो गए तो ये सपना यथार्थ में बदल गया। परिवार समेत चीन रवाना होने से ठीक पहले बीबीसी संवाददाता विनीत खरे हवाई अड्डे पर वांगशी से बात कर रहे थे। कितने खुश लग रहे हैं वांगशी।
मैं तो जा रहा हूं, मैं आप लोग नहीं छोड़ रहा। तुम लोग जैसे अफसोस मत करो, मैं अपने देश अपने मुल्क का जन्मभूमि थोड़ा लिख कर संतोष आ जाए, आप खुश हो जाए।
लेकिन कभी आपको उम्मीद थी वांगशी जी के अभी जा पाएंगे?
मैंने चाइना भेजना, मैंने 1000 दरखास्त लिख चुकी है, कोई जवाब नहीं। आखने मैंने हाई कोर्ट पे केस किया तो कोई जवाब नहीं। मैंने बहुत परेशान हो गया, फिर मैं चाइना राजदूत मारे हम मदद कर रही मीमीशी कहाँ से मालूम हो गया तो हमारे स्टोरी सुनी हो वो बहुत दुख पड़ गया।
तो आप चाइनीज पासपोर्ट के साथ जा रहे हैं, आपको इंडियन सिटीजनशिप ऑफर हुई थी, आपने मना कर दिया, तो आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले जा रहे? सुशीला जी तो गांव में आए हैं।
ज्यादा तबीयत ठीक नहीं।
लेकिन फिर कब आप वापस आएंगे?
मैं सोच मैं गवर्नमेंट की मैंने 1 साल का टाइम ले लिया, मेरे 1 साल का तो आना जाना कर सकता है।
इतने साल आपने हिंदुस्तान में बिताए हैं, मुश्किलें देखी और आखिरकार अपने घर जा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को आप?
हम कितना साल बिक गया तो उस जगह ये बहुत प्रेम हो गया, ऐसे नहीं जाना को इच्छा नहीं है। अब क्या करो, 54 साल है तो संसार सबके भाई बहन है, सबका माँ बाप है, जो संसार सबसे बड़े तो माँ बाप है, तो माँ बाप आज तो गुजर गया, अब भाई लोग है, चलो बुढ़ापा का भाई बहन होगा तो एक माँ तो मिल लो।
चीन रवाना होने से पहले वांगशी कह रहे थे कि वो भारत आते रहेंगे, लेकिन उनकी घर वापसी का ये मसला आसान भी नहीं था। तमाम अड़चनों से भरी एक कहानी। वांगशी को विदा करने के बाद मैंने विनीत खरे से उनके जीवन के उतार चढ़ाव और 54 साल तक भारत में फंसे रहने की कहानी जानी।
संक्षेप में बता दूं, 1962 भारत चीन युद्ध होता है, 1963 जनवरी वांगशी भारत के अंदर घुसते हैं। इनका कहना है कि गलती से भारत में आ गए। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये घुस गए थे और इनके पास कोई कागजात नहीं थे और उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं बताई। उसके बाद से 1963 से 1969 तक ये जेल में रहते हैं। 1969 में इन्हें बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ तिरोड़ी गांव है, वहाँ इन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से ये थोड़ा बहुत लोकल काम करते हैं। 1975 में इनकी शादी होती है, लेकिन अपने घर को हमेशा मिस करते हैं और उसके बाद से लगातार कोशिश करते रहते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, लेकिन इनका कोई भला नहीं होता है। उसके बाद से मीडिया में कहानी हमने जब की थी उसका एक तरह से इम्पैक्ट हुआ और उसको फॉलो किया गया है। हिंदुस्तान भी और चीन में भी इसकी काफी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालयों की तरफ से दोनों तरफ से फिर बयान आए कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं इन्हें वापस भेजने की और आखिरकार 11 जनवरी की सुबह 3 बजे की फ्लाइट से ये वापस चीन जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। शांगसी प्रांत है चीन में जहां पर इनका घर है।
तो ऐसी क्या वजह थी कि 54 साल तक वांगशी की फाइलें इधर उधर टहलती रही और उस पर कोई काम ही नहीं हुआ, और इस दरमियान उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे भी हो गए और भरा पूरा परिवार है।
पूरी कहानी में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिनका या तो सरकार को पता है जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। ये क्यों इन्हें बालाघाट में भेजा गया, क्यों इन्हें वापस चीन भेजने की कोशिश क्यों नहीं की गई, इसके बारे में कोई कुछ अधिकारी बोलना नहीं चाहता। जब मेरी जो बालाघाट के डीएम है उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने भी ये बात कही कि भाई इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं कि क्या हुआ।
विनीत, इस स्टोरी को फॉलो करने के बाद जिसको हम कहते हैं कि एक प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, इसे जर्नलिज्म का सफल उदाहरण माना जाएगा?
जो जर्नलिज्म के तरीके होते हैं बीबीसी में जिस तरह से हम फॉलो करते हैं वो हमने फॉलो किए। वांगशी और इनका बेटा दिल्ली आए थे, हम उनसे मिले, काफी देर मेरी लंबी बातचीत हुई और वो एक जो डेस्परेशन है वापस घर जाने का वो बहुत ही साफ दिखता था। इनके जो पुराने नेबर्स थे, पड़ोसी से, उनसे बातचीत की और सबने कहा कि ये बहुत ऑनेस्ट है, इनको वापस जाना चाहिए, वापस जाएंगे तो हमें दुख जरूर होगा लेकिन इन्हें अपने परिवार से मिलने एक बार वापस जरूर भेजना चाहिए क्योंकि इनकी उम्र हो गई है 77 साल हैं।
अब ये वापस आएंगे हिंदुस्तान?
जो बेटे हैं विष्णु से मेरी बात हुई, मैंने उनसे भी यही पूछा, तो उनका कहना था कि भाई इन्हें भारतीय नागरिकता ऑफर हुई थी, इन्होंने मना कर दिया, इनके पास चाइनीज पासपोर्ट है, अभी आएंगे विजिट्स में आएंगे वापस। इनका परिवार जो यहाँ पर है वो अब वीजा लेके विजिट्स पे चीन जाएगा, तो ये आते रहेंगे थोड़े थोड़े देर में देने में, लेकिन अभी परमानेंटली चीन चले गए हैं परिवार का कहना था।
तो बीबीसी हिंदी की पत्रकारिता ने दिखाया असर। 54 साल के बाद भारत में फंसे चीनी नागरिक वांगशी परिवार समेत चीन रवाना हुए।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत, और अब बात हम उत्तर प्रदेश चुनावों की करते हैं। यहाँ पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। 15 जिलों की 73 सीटों के लिए आज मतदान होने हैं। इसमें कई चर्चित उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं और क्या मुकाबला है, अंतिम क्षणों तक संशय बना हुआ है। सवेरा जब होगा तो वोट डलने भी शुरू हो जाएंगे। एक रिपोर्ट सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की जिन 73 सीटों पर आज मतदान होने हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा कई सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल की भी मजबूत दावेदारी बताई जा रही है। पहले चरण के लिए कुल 840 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में यूं तो कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जातीय और धार्मिक समीकरण भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। जानकारों का कहना है कि राजनीतिक दलों ने इसी हिसाब से टिकट भी बांटे हैं, भले ही ये कहा जाए कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव कहते हैं,
दो मुद्दे सबसे अधिक रिलेवेंट हैं। एक गन्ना किसानों का मुद्दा है, बकाए के भुगतान को लेकर के, और कानून व्यवस्था जिस तरह से नीलामी हुई नौकरियों की, वो भी एक बड़ा मुद्दा है।
वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इस चरण के मतदान को बीजेपी जाति और संप्रदाय पर आधारित बनाना चाहती है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। पार्टी प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही समृद्ध क्षेत्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसको किसी की नजर लग गई और सिर्फ वोट की लालच में उसको सांप्रदायिकता की आग में छोड़ दिया गया। जो लोग अपने काम धंधे के लिए बाहर जाकर के जाने को मजबूर हुए उसको भी पलायन से जोड़ दिया गया, एक वर्ग विशेष की त्रासदी को जोड़ा गया।
बात यदि पिछले विधानसभा चुनाव की जाए तो इन सीटों पर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। इन 73 सीटों में समाजवादी पार्टी को 24, बीएसपी को 23, बीजेपी को 12, आरएलडी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थीं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि मतदाता जाति और धर्म को ही मतदान का आधार बनाता है या फिर अपने नेताओं को अन्य योग्यताओं के आधार पर तौलता है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
ये रिपोर्ट तो हमने सुन ली और अब सीधे कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव को, जो कि इस चुनाव में लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता की बात समझना चाहते हैं, जनता की बात समझ रहे हैं, सीधे कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, लखनऊ चल रहे हैं। नितिन, आपने कई इलाकों का दौरा किया, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कौन कौन से, हमारे श्रोताओं को बताइए, बड़े चेहरे जिनकी किस्मत पर आज लोग मुहर लगा देंगे।
जी देखिए, 73 सीटें हैं, उनमें से जो प्रमुख नाम है वो तमाम पार्टियों के हैं, लेकिन जो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाम है वो थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे पूर्व उनके प्रदेश के प्रमुख रहे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, मेरठ से लड़ रहे हैं, पिछली बार कुल 6000 वोटों से जीते थे, इस बार बता रहे हैं लोग फाइट ज्यादा है। कैराना में बीजेपी के जो अभी सांसद है हुकुम सिंह, उनकी बेटी मृगांका अपने ही कजिन भाई अनिल चौहान के साथ लड़ाई में है, जो बताया जाता है बागी है। और उसके अलावा दो बड़े नेता संगीत सोम और सुरेश राणा, जो बीजेपी की यूपी इकाई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी इस मैदान में हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह गौतमबुद्ध नगर से हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह भी इस बार चुनाव में उतारे गए हैं। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीकांत शर्मा,
मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन बड़े नामों पर नजर लगी रहेगी। नितिन, जाइएगा कहीं मत, कार्यक्रम में हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस समय हम चल रहे हैं अपनी संवाददाता दिव्या आर्य के पास, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटी हैं। दिव्या, किस तरह की हवा आपको देखी, आपको लगी, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर गई, शामली गई, क्या लोगों के मन में है आज वोट डालते समय, होगा?
मोहनलाल जी, और कुछ होना हो लेकिन 2013 सितंबर में हुए जो दंगे थे वो लोगों के मन में अभी भी बहुत साफ हैं और उनका प्रभाव इस चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा, जैसा कि उस वक्त भी 2014 में देखने को मिला था। समुदाय बहुत बटे हुए दिखे, आपस में बातचीत नहीं है। जो लोग दंगों के समय विस्थापित हुए थे वो अब अलग अलग जगह उन्होंने अपने मुआवजे से जमीन लेके घर बनाए हैं, लेकिन ये कॉलोनियां क्योंकि सरकार ने नहीं बसाई हैं, यहाँ पर पानी बिजली कोई ड्रेनेज नहीं है और तमाम दिक्कतें हैं, तो वो मुद्दे जरूर उनके दिमाग पर रहेंगे। और ना सिर्फ वो जगह से डिस्प्लेस हुए हैं, अपने घर उनके छूटे हैं, बल्कि लोगों से बातचीत बिल्कुल बंद है, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो वो जो एक विभाजन हुआ है, वो जो एक नाराजगी है, वो बहुत ज्यादा अभी भी बनी हुई है। करीबन 3.5 साल हो गए हैं अब, और उसका
इसकी झलक नजर भी आती है, इसकी झलक आपने भी देखी होगी।
बिल्कुल, मैं कई दंगा पीड़ितों से मिली और उनसे जब आप पूछते हैं कि वो किस पार्टी को वोट डालेंगे तो वो अपनी पसंद बहुत ही साफ तरीके से जाहिर करते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि इसका चुनाव पर असर जरूर होगा। हाँ। वैसे अगर आप इलाके में देखें तो बिजली, सड़क और रोजगार, ये बहुत ही ज्यादा हर जगह आपको कैराना, कांदला, जितने इलाकों में मैं घूमी वहां पे दिखाई देते हैं, लेकिन आप चुनाव में मतदान की बात करें तो इन मुद्दों पे बात नहीं होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आर्य, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई इलाकों का दौरा करके लौटी, फिर से हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं नितिन श्रीवास्तव को। नितिन, अब मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि एक आपने खाका बता दिया कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं इस समय, जो उत्तर प्रदेश के अखबार हैं निश्चित तौर पर हेडलाइन वही होगी।
जी बिल्कुल, और अखबारों की जो हेडलाइंस है वो बड़ी दिलचस्प है वाकई में। जाहिर है चुनाव है तो सभी अखबार उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंसिटिव इलाका है, जैसे दिव्या भी अभी जिक्र कर रही थी, तो मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया की जो हेडलाइन है, आधी तो बहुत ही सहज है, यूपी पोल्स बिगिन टुडे, उसके बाद वाली जो है वो कहती है ऑल आईज ऑन वाइल्ड वेस्ट, यानी कि जिस तरह का आक्रामक पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है और जो माहौल रहा है वहां पर, उसकी गंभीरता को ये हेडलाइन जरूर दर्शाती है। और दैनिक जागरण की हेडलाइन है, पहले चरण के साथ होगा चुनावी आगाज, किसके हाथ में आएगा पश्चिमी यूपी, यानी जो समीर अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे थे कि जो ऐसी आशंकाएं हैं कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके रुझान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शायद थोड़े साफ होने शुरू हो जाएंगे, उसकी आशंका अखबार भी कर रहा है। अमर उजाला पे लौटते हैं, अखबार की हेडलाइन है कुछ ही देर में आज होगा यूपी में महासंग्राम का आगाज, अखबार
मतलब तैयारी,
नामी ग्रामीण लोगों की जी बारे में बात करता है जो चुनाव लड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन अगेन फिर से वही है, बैटल फॉर हार्टलैंड बिगिंस, दैट में होल्ड द की, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों में हो
सत्ता
सकता
की चाबी जो है वो यहीं से आए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, और अब अपने श्रोताओं को बता दें कि आज बीबीसी इंडिया बोल में क्या होगा चर्चा का विषय।
बीबीसी इंडिया बोल,
क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का जादू अब भी कारगर होगा? बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने नहीं लाई है, अब दारोमदार है नरेंद्र मोदी पर, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बसपा जैसी मजबूत पार्टियों के सामने वो टिक पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? इस शनिवार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल,
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत, और कार्यक्रम में अब वक्त है विवेचना कार्यक्रम का। 1973 में इसराइल को इस बात का तो अंदाजा था कि मिस्र और सीरिया उस पर हमले की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह हमला किस दिन होगा इसकी उनको कोई भी हवा नहीं थी। तभी इसराइल की खुफिया एजेंसी के पास उनके लिए काम करने वाले एक मिस्री जासूस का फोन आया कि हमला एक दिन बाद होगा। ये जासूस और कोई नहीं, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल नासिर का दामाद अशरफ मारवान था। इस पूरे प्रकरण पर हाल ही में यूरी बार जोसेफ की एक किताब प्रकाशित हुई है, द एंजल द इजिप्शियन स्पाई हु सेव्ड इसराइल। आज की विवेचना में रेहान फजल चर्चा कर रहे हैं इसी किताब पर।
इट्स जस्ट वेरी सिंपल प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ माय लैंड इज ऑक्युपाइड, दिस पार्ट ऑफ माय लैंड आई वांट टू बी लिबरेटेड बाय पीसफुल सॉल्यूशन, or if it is not liberated by peaceful solution, it is my right and duty to liberate it.
ये आवाज थी मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की, जो कह रहे थे कि अगर वो अपनी भूमि पर कब्जा किए हुए इलाके से इसराइल को शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हटा पाए तो उसको वहां से हटाने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है करेंगे। यूं तो इसराइल पर मिस्र और सीरिया ने 6 अक्टूबर 1973 को हमला किया, लेकिन एक सप्ताह पहले से ही इसराइली खुफिया एजेंसियां मिस्र के खेमे में हो रही सैनिक हलचल की खबर दे रही थी। 4 अक्टूबर को सोवियत संघ ने मिस्र से अपने सभी सैनिक सलाहकारों और उनके परिवारजनों को हटाना शुरू कर दिया था। फिर भी इसराइली मानने को तैयार नहीं थे कि हमला होने जा रहा है। अचानक मोसाद के लिए काम करने वाले अनवर सादात के नजदीकी साथी अशरफ मारवान का अपने हैंडलर दूबी के पास फोन आया कि वो उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैंने इसराइल फोन कर द एंजल द इजिप्शियन स्पाई हु सेव्ड इसराइल के लेखक यूरी बार जोसेफ से संपर्क किया, जो हाइफा विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं और इसराइली सेना में भी काम कर चुके हैं।
Marwan studied chemistry, so the code words for war were taken from chemistry and like phosphate or salt or whatever it is, and each code word had another meaning.
मारवान केमिस्ट्री का विद्यार्थी था, इसलिए युद्ध के लिए कोड वर्ड रखा गया था केमिकल। 4 अक्टूबर को उसने पेरिस से फोन किया कि वो दूबी से तुरंत मिलना चाहता है। जैसे ही दूबी लाइन पर आए, मारवान ने कहा वो बहुत सारे केमिकल्स के बारे में बात करना चाहता है, उसकी मोसाद के प्रमुख से लंदन में बैठक तय कराई जाए। ये खबर रात 12 बजे इसराइल पहुंची। मोसाद के प्रमुख मेजर जनरल जमीर ने सुबह की फ्लाइट से लंदन का रुख किया। दूबी और जमीर मारवान से मिलने पहुंचे। रात 11:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने अशरफ मारवान खड़े थे। वो अपने साथ कोई कागज नहीं लाए थे, लेकिन मिस्र की युद्ध योजना का एक एक बिंदु उनकी याददाश्त में दर्ज था। बैठक 2 घंटे चली। तड़के 3 बजे जमीर ने तेल अवीव फोन मिलाया। 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री गोल्डा मायर समेत इसराइल का पूरा नेतृत्व जाग चुका था। 9 बजे तक हमले का करारा जवाब देने के आदेश दिए गए और 10:00 बजते योम किपुर की छुट्टी पर गए इसराइली सैनिकों के घर पर फोन बजने लगे।
पहले चरण में मिस्र के 32,000 पैदल सैनिकों ने 720 नावों में स्वेज नहर पार की और बिना किसी विरोध के इसराइली इलाके में पहुंच गए। मैंने बार जोसेफ से पूछा कि इतनी जानकारी देने के बावजूद मारवान हमले का सही समय क्यों नहीं बता पाए। उन्होंने कहा हमला शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि हमला हुआ दोपहर 2 बजे।
He got the timing wrong because he left Egypt on Tuesday. The timing of the war was changed on Wednesday in a talk between Egypt's war minister who went to Syria to speak with President Assad, the father of Bashar Assad.
वो सही समय इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वो मंगलवार को मिस्र छोड़ चुके थे। हमले का दिन बुधवार को बदला गया, जब मिस्र के युद्ध मंत्री सीरिया के राष्ट्रपति असद से मिलने दमिश्क गए। सीरियाई सुबह 6 बजे लड़ाई शुरू करना चाहते थे, जबकि मिस्र शाम 6 बजे लड़ाई शुरू करने के पक्ष में था। समझौता हुआ कि हमला दोपहर 2 बजे शुरू होगा, इसलिए मारवान को इसकी भनक नहीं लग पाई।
दूसरी तरफ मिस्र के चोटी के सुरक्षा विशेषज्ञ अब्दुल मोनेम सैयद कहते हैं कि मरवान ने जानबूझकर इसराइलियों को गलत सूचना दी।
He was officially working for the president of Egypt, but also he was working for the security.
वो मिस्र के राष्ट्रपति के लिए काम कर रहे थे और साथ साथ मिस्र के सुरक्षा तंत्र के लिए भी। ये पहले से ही तय था कि वो इस तरह की खबर देकर इसराइलियों को भ्रमित करेंगे।
जब सैयद से कहा गया कि इसराइलियों का मानना है कि मरवान ने उन्हें ऐसी जानकारी दी जो पहले उन्हें किसी से भी नहीं मिली थी, तो सैयद का जवाब था।
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों में इसी तरह की खबरें देकर विश्वास बनाया जाता है। आप उन्हें बेहतरीन सूचनाएं देते हैं जिससे आपका उद्देश्य पूरा होता है।
सवाल उठता है कि मारवान के पास ऐसे क्या कारण थे कि उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करने का फैसला किया।
The Mossad believes that it was a combination of money and his desire to become a very important man to influence history.
मोसाद का मानना है कि पैसा और इतिहास में एक खास मुकाम हासिल करने की उसकी चाहत ने उससे ऐसा करवाया। कुछ लोगों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, चाहे वो शारीरिक जोखिम हो या भावनात्मक। यही वजह है कि कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग, स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग जैसे शौक चुनते हैं। लेकिन मारवान को खेलों का कोई शौक नहीं था। इसके बदले उसे जुए, अनैतिक व्यापार, सौदों और इसराइल के साथ संबंधों में अनावश्यक जोखिम उठाने में अपूर्व संतुष्टि मिलती थी। ये समझना गलत नहीं होगा कि उसके बढ़े हुए अहम, नासिर के साथ कुंठित संबंध और विश्वासघात, इन सब से मारवान को एक खास किस्म का किक मिलता था।
2007 में अशरफ मारवान की लंदन में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वो लंदन स्थित अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे गिर पड़े। स्कॉटलैंड यार्ड ने उसकी जांच की, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बाद में मरवान के बेटे कमाल मरवान ने कहा,
मैं निश्चित नहीं हूं कि हुआ क्या था, लेकिन इस बारे में मैं निश्चित हूं कि उनकी हत्या हुई थी 100%।
उनका कहना था कि उनके पिता इतने कमजोर थे कि वो रेलिंग के ऊपर चढ़कर नीचे नहीं कूद सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल के पास 2 काली चमड़ी के लोगों को मंडराते हुए देखा था। बार जोसेफ बताते हैं,
Scotland Yard that investigated this case and the British authorities concluded that it wasn't a suicide and it wasn't an accident.
स्कॉटलैंड यार्ड ने इस पूरे मामले की जांच की थी और वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये आत्महत्या का मामला नहीं था और न ही दुर्घटना थी। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हत्या की गई थी। वो मेफेयर में अपने फ्लैट की रेलिंग पर चढ़कर नीचे कूद गए थे। किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन हमारा मानना है कि उस दिन मारवान की बालकनी के बगल वाले शयन कक्ष में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने उन्हें ऐसा विकल्प दिया जिसे वो नामंजूर नहीं कर पाए। संभवतः उन्होंने उनसे कहा कि हमारे धक्का देने से बेहतर है कि तुम ही अपने आप को मार लो। मेरा मानना है कि मिस्र की खुफिया एजेंसियों ने ये काम अंजाम दिया था, क्योंकि उनका अतीत मुबारक प्रशासन के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब था।
उनकी मौत के बाद अशरफ मरवान के शव को मिस्र ले जाया गया। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक के बेटे और मिस्र की खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। राष्ट्रपति मुबारक ने भी वक्तव्य जारी कर कहा कि मरवान देशभक्त थे और अपने देश के लिए वफादार थे। मैंने यूरी बार जोसेफ से पूछा कि मरवान अगर गद्दार थे तो उनकी इतने सम्मान के साथ अंत्येष्टि कैसे हुई?
This is the way to do it because, as I said, Marwan was one of them. He was the son-in-law of President Nasser. He was a very close advisor and friend of President Sadat.
इस तरह की चीजें इसी तरह की जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, वो मिस्र के राष्ट्रपति नासिर का दामाद था। वो राष्ट्रपति सादात का भी बहुत नजदीकी सलाहकार था। किम फिल्बी के मामले में भी ब्रिटिश चाहते थे कि वो सोवियत संघ वापस चला जाए, बजाय इसके कि उस पर ब्रिटेन में मुकदमा चले। उसी तरह मिस्र वाले भी चाहते थे कि मरवान की मौत लंदन में हो, बजाय इसके कि उस पर मिस्र में मुकदमा चले और पूरी सरकार शर्मसार हो। इसलिए बेहतर तरीका था कि उनसे लंदन में पिंड छुड़ाया जाए और उनकी राजकीय अंत्येष्टि का ढोंग रचाया जाए।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
यहां पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यदि आप इस विवेचना को दोबारा सुनना चाहते हैं तो bbchindi.com के मल्टीमीडिया सेक्शन में आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। इसके अलावा चीनी सैनिक वांगशी की वतन वापसी पर उन्होंने क्या बातें कही हैं, ये आप सुन सकते हैं। हाँ, अगर आप फिल्म रिव्यू देखना चाहते हैं जॉली LLB 2 कैसी है, तो फिल्म रिव्यू भी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
54 सालों से भारत में फंसे पूर्व चीनी सैनिक वांगशी अपने भारतीय परिवार के साथ चीन रवाना हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर आज मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए कुल 840 उम्मीदवार मैदान में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो यात्रा प्रतिबंधों को लेकर लाए गए अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोकने के अदालती आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिन भर यानी कि पूरे दिन भर क्या चुनाव से जुड़ी गतिविधियां हैं, bbchindi.com पर उपलब्ध रहेंगी। शाम को दिन भर कार्यक्रम लेकर यानी कि बीबीसी इंडिया बोल लेकर फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।